अवश्योर्दम कृषतास्तस्य प्रबुद्धा विषय प्रवाला अवश्य मुन्नानुसंगतानी कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अवश्योर्दम कृषतास्तस्य शाखा प्रबुद्धा विषय प्रवाला अदश्यमानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके का वर्णन किया तो किसमें भगवान ने उसका स्पष्टीकरण कठोर निषद में जो ये अश्वन वर्ष का वर्णन है वो ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इसमें जब ये दूसरा इसमें पढ़ते हैं गीता का तो उससे पता चलता है वो कैसा है। अदस्य उर्धम प्रस्ताव शाखा उसकी शाखाएं नीचे ऊपर सब तरफ फैली हुई गुण प्रवृत्ता और ये शाखाएं बढ़ती कहते हैं गुण प्रवृत्ता। गुण कौन से? सत्य सप्तम इन तीन गुणों के बल पर ये साधना करती है। विषय प्रबाला और उसमें प्रबाल प्रबाल के माने उसमें गोपने जो व्यक्ति हैं वे विषय विषय माने इंद्रियों के जो गुण के पदार्थ हैं वो विषय कहलाते हैं। अध्यक्ष वे प्रबाल के समान है उस के गोपने के समान अदस्य मुन्नानि अनुसंततानि और उसकी जड़ें नीचे की तरफ भी लटक रही हैं बरगद के जटाए नीचे गिर सकती है। ऐसे ही कहते हैं कि अदृश्य है और नीचे की ओर मुद्रानी बहुत सी जगह उसकी जगह अनुसंतानी अनुसंतानी में फैली हुई जो जमी है लेकिन वो शिक्षक तरफ फैली हुई और कर्मानुबंधी नहीं और यह कर्म का बंधन उत्पन्न करने वाले मनुष्य लोग के मनुष्य लोग। अब इसमें अगर वो धन प्रस्ताव से शाखा इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसकी शाखाएं नीचे भी गई ऊपर भी गई। जो कर्म वृक्ष है संसार वृक्ष है उसकी शाखाएं ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। ऊपर जाने के माने व्यक्ति स्वर्ग लोग चला गया ऊपर भी शाखा चली गई नरक लोग भी चला गया उसकी शाखा नीचे भी चली। तो ये कर्म वृक्ष सब ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ स्वर्ग से लेकर के नरम लोगों तक ये सब फैला हुआ इसलिए बता दिए इसकी शाखाएं ऊपर नीचे सब तरह फैली हुई। आपको लगे कि ये वृक्ष तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसकी शाखाएं अगर उल्टा ही होता नीचे की तरफ चलता तो तना होता तना के बाद फिर शाखाएं होती शाखाएं फिर से नीचे फैलती जाती है लेकिन कहते हैं इसकी कोई कोई शाखा ऊपर ही पड़ जाती निकलती निकल करके नीचे ही करती जाती ऊपर ही करती वहां शर्म की बढ़ जाती तो अद्भुत को हो जाता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इसकी शाखाएं ऊपर भी जाती नीचे भी जाती हैं लेकिन शाखाएं बढ़ती कहते हैं गुण प्रवाला ये गुण प्रवाल से गुण प्रबुद्धा सप्तगुण रजोगुण जब व्यक्ति मनुष्य कर्म करता है तो उस कर्म के फलस्वरूप तमोगुण बढ़ा रजोगुण बढ़ा तो क्या हुआ उसकी शाखा नीचे वाली शाखा बढ़ गई जो शाखा से नरक जाता है वो शाखा फैल गई बड़ी हो गई। अगर उसने पुण्य कार्य किए सप्तगुण उसका बढ़ा तो सप्तगुण बढ़ने पर उसकी शाखा ऊपर की तरफ चल गई स्वर्ग की तरफ चली वहां उसने पहुंचा दिया। तो स्वर्ग नरक की प्राप्ति कैसे होती है इन्हीं गुणों के बल पर होती है सप्तगुण के ऊपर जो गुण कर्मगुण इन्हीं के कारण तो गुण प्रबद्धा और विषय प्रबाला और सब जगह विषय प्राप्त होते रहते हैं व्यक्ति को स्वर्ग लोग से लेकर के नरक लोग तक भोग्य पदार्थ जो कुछ प्राप्त होते हैं सब विषय और मनुष्य लोग में भी मध्य लोक में भी मृत लोग है इसमें भी विषय प्राप्त होते हैं। नरक लोक में जो विषय प्राप्त होते हैं वो दुख देने वाले होते हैं कड़वे होते हैं। स्वर्ग में जो जो फल देने फल प्राप्त होते हैं वो मधुर फल होते हैं। इसी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि देखो ये जो है इसके जो है ये फल जिसमें लगते हैं दो प्रकार के फल जुगुल विधि कट मधुर इसके दो प्रकार के कड़वे मीठे फल तो ये कड़वे मीठे फल क्या है ये विषय ही इसके फल जब स्वर्ग के अनुकूल मिल गए तो वो हो गए सुखदायी मधुर हो गए अगर नरक पहुंच गए और वहां के कष्ट भोगने पड़े तो उनके कड़वे इस प्रकार का ही सबका सब संसार वृक्ष इस प्रकार का अवश्य मूलान संतानी पत्र कहते हैं जिसकी और जड़ें हैं जो कि नीचे की तरफ फैल रही है। अब ये जड़ तो इसकी सबसे ऊपर है, उसी ऊपर की जड़ से सबकी सब शाखाएं निकली हैं, लेकिन फिर कहते हैं उसमें से उन शाखाओं से भी फिर वो निकलती हैं और जड़ें और नीचे की तरफ जाती हैं। नीचे की तरफ जाने के माने ये है कि ये संसार वृक्ष ये कल्याणकारी नहीं है, इसकी अधोगति ही है। चाहे आप स्वर्ग जाओ तो भी अधोगति, नरक जाओ तो भी अधोगति, इसकी जड़ें सदा नीचे ही जाने वाली। जो संसार में अटका रहेगा, भौतिक जीवन में अटका रहेगा, विषय भोगों में अटका रहेगा, उसका क्या होगा? परिणाम अधोगति, बार बार नीचे की तरफ जाता रहेगा और नीचे चला जाएगा और विनाश हो जाएगा और विनाश हो जाएगा और विनाश हो जाएगा, बस यही होता चला जाएगा। इसलिए कहता है अवश्य मूलानम संततानि कर्मानुबंधीनी, और कर्मानुबंधीन के मने ये कर्म का बंधन है, ये संसार पुष्टा ये कर्म का बंधन है, ऐसी में व्यक्ति बंधा रहता है। और मनुष्य लोके के मैंने क्या हुआ कि मनुष्य लोक में जो स्वर्ग लोग भी हैं, नरक लोग भी हैं, और ये मृत्यु लोग है जिसे कि मनुष्य लोग कह सकते हैं। इस मृत्यु लोक में भी मनुष्य भी हैं, इस प्रकार उनका पक्षी भी है, लेकिन इसमें जो केवल मनुष्य भी है वो वही शुभाशुभ कर्म करता है और वही अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण बंधन में पड़ता है, और बंधन में पड़ने के बाद फिर शरीर छोड़ करके चाहे कीट पतंग का पक्षी हो चाहे देवता बने, और वहां सुख दुख का भोग करने के बाद फिर मन शरीर में आ जाता है। इसलिए ये संसार वृक्ष समझने के लिए और इस संसार वृक्ष को से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए मनुष्य लोक में, जिस समय मनुष्य लोक में जिस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, जिस समय जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उस समय वो मनुष्य लोक में होता है। लोक के मन को याद रखो क्या एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, एक अनुभव का जगत, ये मनुष्य शरीर एक विशेष प्रकार के अनुभव का स्थल है। यहां पर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के फल भी भोगता है, नए कर्म भी करता है, वे नए कर्म उसके लिए बंधनकारी भी हो सकते हैं, उच्च लोगों की प्राप्ति कराने वाले भी हो सकते हैं, नीचे के लोगों को भी प्राप्त कराने वाले हो सकते हैं, और मनुष्य लोक में ही व्यक्ति ऐसे भी कर्म कर सकता है जो उसके पुराने कर्मों से उसको छुटकारा दिला दे, कर्म के बंधन से वो छूट जाए, ऐसा भी मनुष्य लोक में संभव है। इसलिए सारी विशेषताएं ये मनुष्य लोक की है, और ये शास्त्र भी मनुष्य लोक में है, संतों के उपदेश भी मनुष्य लोक में ही है, साधन मनुष्य जो साधन करता है अपने उद्धार के लिए वो भी मनुष्य लोक में ही होता है, अन्य लोकों में नहीं होता। इसलिए इस मनुष्य लोक की महानता प्रधानता को देकर के कहते हैं कि देखो इस मनुष्य लोक में ही कर्म के बंधन में इस प्रकार की बंधा हुआ है, और कर्म के बंधन में बंधा होना ही यही अश्वत्थ वृक्ष है। पिछले श्लोक में था अव्ययम, ये अव्यय है, अव्यय के माने है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अनादि के माने तो ये जिसका भी कोई याद ही नहीं, लेकिन अव्यय के माने है जो अनंत है, सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला कि मैंने हर प्राणी हर मनुष्य को इसी प्रकार कर्म बंधन में बना ही रहेगा, तो उसको यहां ये समझना चाहिए अव्यय कोई वस्तु होती है, अव्यय होती है, नित्य होती है, तो वो दो प्रकार की होती है, एक दस्त अव्यय होती है और एक प्रवाही अव्यय होती है। प्रवाही अव्यय, प्रवाही यानी जगत जैसे प्रवाही अव्यय है, जगत बनता है, बिगड़ जाता है, प्रलय हो जाती है, फिर जगत पैदा हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, ये जगत का प्रवाह कहलाता है, और प्रवाह के में बदलना भी है, ये जगत हर क्षण बदलता भी रहता है, और सृष्टि और बिना प्रलय भी होती रहती, लेकिन चलता रहता, सदा चलता रहता है इस प्रकार। ऐसे ही जीवों का संसार जो है वो भी अनादि है, कर्म का बंधन भी अनादि है, जीव उसी कर्म बंधन में बंधा भी रहता है, शुभाशुभ कर्म करता भी रहता है, सुख दुख भोगता भी रहता है और सदा ऐसे ही चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। फिर क्या होना चाहिए तो बताए कि जो जब व्यक्ति साधना करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, ये संसार चक्र से बाहर निकल जाता है, तब फिर उसका ये संसार समाप्त हो जाता है। ये प्रवाही संसार भी एक दिन समाप्त हो जाता है। अव्यक्त तो अव्यक्तों कह दिया कि अगर इसका नाश हो जाता है किसी उपाय से तो अव्यक्तों कह दिया, ये अव्यक्त उन लोगों के लिए कह दिया कि जो लोग ये समझते हैं कि जिस कर्म बंधन में हम बंधे हुए हैं, जिस चाल में हम फंस गए हैं, किसी दिन अपने आप छूट जाएगा, जब हम मर जाएंगे तो अपने आप छूट जाएगा, जब प्रलय काल आएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगा, उनके लिए कहते हैं कि देखो ऐसा होने वाला नहीं है, ये तो तुम्हें अपने आप अपनी साधना करनी ही पड़ेगी, अपना उद्धार अपने आप करना ही पड़ेगा, जब अपना उद्धार करोगे तभी से छुटकारा होगा। ये इस प्रकार के दो श्लोकों में इस संसार पक्ष का वर्णन कर दिया और कर्मानुबंधी बता दिया, कर्म का बंधन बता दिया। अब तीसरे श्लोक में इससे छूटने के उपाय बताएंगे, उसके अपन रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान किनांतरात्मा लक्ष्मीं प्रयच्छ रघुकुंडल निर्भराम्ये समाधि गुरुमान संच